उनकी हजामत बना दी कृष्ण की, उनको घंघरा पहना दिया कृष्ण को, लहंगा चुंदड़ी ओढ़ा दी और मटके सिर पर दे दिए, और मटके देकर के ऊपर में चढ़ गई और वहीं से पत्थर का टुकड़ा मारा वो फूट गया और कृष्ण ने स्नान कर दिया। काजे कान पकड़ो, अब से ऐसा नहीं करेंगे। उनकी चोटी बांध दी पेड़ों में, दुर्गति कर दी, और वो तो कान पकड़ करके मधुमंगल काजे अब आज से नहीं करेंगे, इससे कृष्ण से हमारा कोई संबंध नहीं, इसका के साथ हमारे केवल खाने का संबंध, अब तुम ही लोगों के हम लड्डू लेंगे उसके दल में जाएंगे ही नहीं। ऐसी सब लीलाएं परब्रह्म होकर के जो लीलाएं कर रहे हैं, इन सब लीलाओं का की स्मृति होने की, जिसमें सूर्य लोग भी मोहित हो जाते हैं, मोहयंत जब सूर्य ब्रह्मा इत्यादि भी मोहित हो जा रही, ये बालक है न पर ब्रह्म है, ऐसे ऐसी लीलाओं का उन्होंने प्रकाश करके वृंदावन में स्थित थे। ये वृंदावन है, कुछ लोग वृंदावन कहते हैं काम्यवन को, तो काम्यवन कौन सा होगा, काम्यवन गया कहां, यदि यही वृंदावन है तो नहीं, वो काम्य ही वन है। महाप्रभु जी ने भी इसको वृंदावन के रूप में इसकी प्रतिष्ठा की, इसलिए चैतन्य महाप्रभु पीछे से आकर के पद्मनाभ के बताए हुए सब चिन्हों के अनुसार में फिर से संसार में प्रकट किया है इन लोगों को। इसका देन बज्रनाथ जी का और बज्रनाथ जी के वो गुरु सांडिल्य जी का, और इसका बहुत कुछ परीक्षित महाराज जी को इसका ये जाता है। परीक्षित महाराज जी नहीं होते तो ये सब नहीं होता। सांडिल्य ऋषि नहीं यदि बतलाते, क्योंकि उनके समय का देखा हुआ था, वो नहीं रहते तो स्थान का होता। अब बज्रनाथ का उत्साह नहीं होता, ये सब चीजें नहीं होती। अब करें कि उस समय में सबका स्थान जब ठीक हो गया, तो वहां पर जितनी रोहिणी इत्यादि माताएं थी, उन्होंने सांडिल्य जी से पूछा, जिससे हम कृष्ण के विरह में बड़ी दुखी हैं, हमारा विरह कैसे जाएगा। उन्होंने कहा यदि उधर से किसी प्रकार से आप लोगों का भेंट हो जाए तो ये हो सकता है। क्यों, उद्धव बहुत दिनों तक ब्रज में थे और गोपियों के साथ में थे, तब आप लोगों का शोक ये दूर हो जाएगा। उद्धव जी कैसे मिले, उद्धव जी कैसे मिलेंगे, इसके लिए सांडिल्य ऋषि जी बतला रहे हैं। भागवत कथा के बिना उद्धव जी का मिलना बड़ा कठिन है। जहां पर भागवत की कथा होगी वहां पर प्रकट हो जाते हैं, अन्यथा वो प्रकट ही नहीं होंगे। जहां पर भगवत प्रेम की बातें होंगी वहीं पर वो प्रकट होते हैं। यहां पर करें जैसे वो कैसे प्रकट होंगे, करें हैं सांडिल्य जी कि अभी अभी जो 5000 वर्ष पहले जो भगवान का अवतार हुआ था, उसमें तीन प्रकार के भक्त लोग सम्मिलित थे ना, तीन प्रकार के लोग थे। एक तो जो नित्य मुक्त उनके पार्षद हैं, वो लोग नित्य मुक्त पार्षद, वो कृष्ण की लीला में थे, जिनको अंतरंग पार्षद भी कह सकते हैं, ललिता विशाखा चित्रा इत्यादि सब सखियां, नंद बाबा देवकी, नंद बाबा यशोदा मैया और उसी तरह की मैयाएं जितनी थी, सुबल सिदाम मधुमंगल इत्यादि सखा लोग, ये सब लोग अंतरंग पार्षद भगवान के। उनका कभी न जन्म होता है न मरण होता है, वो नित्य कृष्ण के साथ में लीलाओं के साथ में प्रकट होते हैं, कृष्ण के साथ में वो लोग चले जाते हैं। इन लोगों का कृष्ण से कभी भी किसी भी स्थिति में वियोग नहीं होता, जिसको हम वियोग कहते हैं उस स्थिति में भी उनसे वियोग नहीं होता। दूसरे वो हैं जो साधन कर रहे हैं, साधन से भावावस्था में पहुंचे हैं, वो भाव भक्त लोग प्रकट लीला में भी थे और इसके बाद में लीला प्रकट हो जाएगी तो भाव भक्त लोग सिद्ध होकर के उस लीला में चले जा सकते हैं, उनका अधिकार है। वो कृष्ण लीला को कुछ समझ नहीं सकते हैं। और तीसरी श्रेणी में देवता लोग, देवता लोग भी अंश रूप में, ब्रह्मा जी ने कहा था ना ये देवता लोग अपने अंश से कृष्ण लीला में गोप और सब लोग हों और जदु वंश में उत्पन्न हों और उनकी स्त्रियां राधा जी की सेवा के लिए देवी के रूप में ब्रज के घर में गोप गोपी अथवा जदुवंशियों की स्त्रियों के रूप में वो लोग प्रकट हों कृष्ण लीला में उनकी सेवा करने के लिए। तो ये लोग थे। इसमें से जो देवता लोग जो थे ना, जो अपने अंश से आए हुए थे और भक्तों में प्रवेश किए थे, उनको कृष्ण द्वारकापुरी में भेज दिया मथुरा से चलाकी से। जब ब्रज की लीला समाप्त हो गई और मथुरा की लीला समाप्त हो गई, एक ही रात में एक ही क्षण में सब जितने यहाँ पर थे, सब वहां के विष्णु कुल के और जितने भी थे उनको भेज दिया। ब्रज का कोई नहीं गया, वही लोग है कौन जो देवताओं के अंश थे और वही लोग अंत में मार काट करके बहाने, वो लोग भी मरे नहीं, मार काट के बहाने महा जोग माया का वो खेल दिखला करके और वो देवलोक में अपने फिर स्थान में पहुंच गए ने? और उनमें जो असल थे ने? वो मथुरा से ही चले गए, मथुरा से ही अंतर ध्यान होकर के या ब्रज से ही अंतर ध्यान होकर के चले गए, वो द्वारका नहीं गए न कृष्ण गए। कृष्ण में कौन गया? वासुदेव गए। और ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर वो कभी भी वृंदावन की सीमा को छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं है, नित्य वही है। उनको देखेंगे कौन? एक तो जो नित्य परिकर अभी जो बतलाया वो, और दूसरे उनको देखेंगे भाव भक्त कब, जबकि सिद्धि हो जाएगी वस्तु सिद्धि तब देखेंगे नित्य, और नहीं तो प्रकट लीला के समय उनको देखेंगे। अब वो युद्ध के बाद में सरकंडों से युद्ध करके वो लोग तो चले गए कौन?
देवता लोग,
देवता वाले। अब जो साधक सिद्ध थे वो कृष्ण के दर्शन से और भक्ति करके वो चले गए। अब जो दूसरे हैं वो वहां पर है नहीं, उनको ब्रज दिखता नहीं, इसलिए ब्रज अभी शून्य सा दिखता है, किंतु कृष्ण की लीलाएं यहाँ पर अभी भी हो रही है, नित्य लीला यहाँ पर है, अभी भी वो सब लीलाएं हो रही हैं, किंतु हम साधारण लोग दृश्यमान वृंदावन में प्रकट लीला वाले कृष्ण को और नवभूमि को देखते हैं। यदि कोई अच्छी तरह से इसका सेवन करे तो इसका दर्शन पा सकता है। इसमें सब समय समझो ब्रज का अर्थ क्या है। ब्रज माने होता है व्याप्ति, व्याप्ति ब्रज माने व्याप्ति। दो ब्रजति चलति, ब्रज धातु का अर्थ होता है गम धातु से ब्रज चलता है। जगत माने भी गम धातु से चलता है। ये चलता है कैसे? जगत
विपरीत
जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयति इत्यादि विनश्यति, इनका छह रूपों में इसका विनाश होता, विनाश की तरफ में जा रहा है जगत। अभी हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, फिर स्थित हो जाते हैं, फिर इसके बाद में धीरे धीरे घटने लगते हैं और अंत में वृद्ध होकर के अंत में चले जाते हैं। ये सभी चीजों का ये है संसार। गम धातु से, और ब्रज धातु से ब्रजति वो क्रमशः ब्रह्मांड को पार कर, विद्या को पार कर, वैकुंठ को पार कर, द्वारका और मथुरा को पार करके जो चल करके ब्रज में पहुंचित होता है कृष्ण के नित्य धाम को, उसको कहते हैं ब्रज। एक तो ये एक अर्थ जीवों को लेकर के चला जाता है ब्रज में, इधर से लेकर के चलता है उधर से, यह हुआ ब्रज शब्द का। और एक अर्थ है ब्रज माने व्याप्ति, व्याप्ति माने क्या, व्याप्ति माने ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कि व्याप्त न हो, इसको कहते हैं व्याप्ति। सब जगह व्याप्त है। तीन गुणों से अतीत जो ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म है, वो सब जगह व्याप्त है अणु अणु में, इसलिए वही एकमात्र ब्रज है। कौन, कृष्ण ही ब्रज है। ब्रज कृष्ण के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं है। आराध्यो भगवान ब्रजे सतमय सद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना भजबर्गे न जा कल्पिता श्रीमद भागवतम पुराण अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत्रादरो न पर। कृष्ण जैसे आराध्य है, ब्रज भूमि भी वैसे ही आराध्य है। ब्रज भूमि को कृष्ण समझो, भागवत कृष्ण है, अलग कुछ मत समझो इन लोगों को। वो केवल भेद है स्वरूप का कुछ देखने का, वही एक ही वस्तु कृष्ण है, वही बलदेव प्रभु धाम बने हुए हैं। कृष्ण और बलदेव अलग नहीं है, नहीं? वो सर्व व्यापक हैं, इसलिए कृष्ण को ही ब्रज कहते हैं। वो कैसे हैं, परम सच्चिदानंद रूप अविनाशीय रसमय रसो वैसा कृष्ण है। वो रसिक जन कृष्ण को कहते हैं आत्मा राम और आप्तकाम। अब इसका अर्थ समझो, आत्मा राम पहले, आत्मा राम माने क्या, आत्मा में जो रमण करते हैं उनको कहते हैं आत्मा राम। कृष्ण की आत्मा राधा जी है, इसलिए आत्मा राम में और राधा में रमण करने वाले वो जो कृष्ण है वही कृष्ण ही आत्मा राम है। ये सर्वोच्च अर्थ है इसका, रूढ़िगत अर्थ। और जब कृष्ण रमण करते हैं ये बाकी के अणु अणु जीवों में, किंतु ठीक से नहीं, आंशिक रूप में। राधा जी के साथ ही में जो विलास इत्यादि करते हैं, इसलिए राधा जी उनकी आत्मा है, उसमें रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम हुआ आत्मा राम। दूसरी बात, आप्तकाम, आप्तकाम कौन है, कृष्ण है आत्मा रामस्य। और फिर आप्तकाम, आत्मकाम माने क्या, काम का अर्थ है अभिलाषा, अभिलाषा पूर्ति होती है प्रेम में, इसका अतिरिक्त अभिलाषा और किसी तरह से पूर्ण रूप से नहीं होगी। कोई भी हम कामना करते हैं उसमें सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, आनंद की परिसमाप्ति अंतिम स्तर में प्रेम में ही होगी, और वो होगी ब्रज प्रेम में। और वो प्रेम कहां पर सबसे अधिक है, श्रीमती राधिका में, जिनकी कामना राधिका जी में है, उसको कहते हैं आप्तकाम। आप्त माने पाना, काम माने है अभिलाषा प्रेम, जिसमें कृष्ण अपनी संपूर्ण अभिलाषा प्राप्त करते हैं, किसमें, राधा जी में। इसलिए आप्तकाम का यथार्थ तात्पर्य है राधा जी की प्राप्ति की अभिलाषा का नाम आप्तकाम। कृष्ण की अभिलाषाएं कहां कहां पर होती हैं, विशेष रूप से गो, गो माने गाय, गो माने गो वत्स, गो माने गोपियां, गो माने गो, गो माने लीला विहार, ये सब गो का अर्थ है। ये सब कृष्ण को नित्य प्राप्त है, विशेष करके गोपियां, गोपियों में श्रीमती राधिका, इसलिए कृष्ण को आप्तकाम और आप्त आत्माराम उनको कहा जाता है। ये उनके पुरोहित जी सांडिल्य ऋषि बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? देखो, कृष्ण को समझना, ये कृष्ण ही राधा जी हैं और राधा जी ही कृष्ण, ऐसा समझना। क्योंकि राधा जी इस वृंदावन में जोग पीठ में बंसी बट पर कृष्ण के वाम अंग से पैदा प्रकट हुए। कृष्ण ही वाम अंग से अर्थात तो राधा जी को उन्होंने प्रकाश किया, इसलिए वामांगी ये है। तो इसलिए राधा जी और कृष्ण ही राधा है, वो कृष्ण है। और उनको बंसी को क्या समझना, दोनों का परस्पर जो प्रेम है यही बंसी है। चंद्रावली क्या है? कृष्ण के चंद्र की नखर की जो चंद्र है उनमें अत्यंत आसक्त रहने के कारण और उसी में सब समय निराजन करती हैं, इसे उनका नाम चंद्रावली दिया। चंद्रावली माने चंद्र अवली, चंद्र तो एक है और यहां पर चंद्र है 20। राधा जी के नखों में और कृष्ण के नखों में उनके ये एक एक जिसने है वो चंद्र है। चंद्रावली जी चरती चरण में जो 10, 5 और 5 नख हैं, उसकी जो शोभा है चंद्र, उनकी सब समय निराजन करती है, अपने प्राण कोटि प्राणों को उसने निर्मंथना करती है, इसलिए उनका नाम हुआ चंद्रावली। कृष्ण की जो पत्नियां थी वो सांडिल्य ऋषि से पूछ रहे हैं, आप ये सब तो बतला रहे हैं किंतु बतलाइए हमारा शोक कैसे जाए, कृष्ण के बिना हमारा जीवन दुर्लभ, हम लोग बच नहीं, आप कृपा करके बतलाइए। उन्होंने कहा जमुना जी से इसका रहस्य पूछ लो। जमुना जी ही जमुना जी का दो रूप कृष्ण लीला में भी शाखा है और वही द्वारका लीला में कालिंदी, दोनों एक ही तत्व है। इसलिए विशाखा जी की प्रार्थना जमुना जी की प्रार्थना हो जाती है। विशाखा जी कृष्ण की अत्यंत प्रिया है, जमुना जी सब समय प्रेम के प्रवाह में बहती रहती है, बड़ी प्रसन्न रहती है। सब लोगों ने पूछा, सब रोहिणी इत्यादि माताओं ने, माता माने इनकी बद्रनाथ जी की कृष्ण की कन्याएं द्वारका वाली, ये आप तो बड़ी प्रसन्न रहती हैं, हम लोग बड़ी दुखी रहती हैं, आप बताइए क्यों प्रसन्न है? तो उन्होंने बतलाया यथार्थ में सर्वतः उनका वियोग नहीं है, राधा इत्यादि गोपियों का कभी वियोग नहीं है, इसलिए मैं जानती हूं कि हमसे उनका वियोग नहीं है, इसलिए मैं सब समय प्रसन्न रहती हूं। तुम लोग जो यदि उद्धव मिल जाए तो तुम लोग भी ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे। उद्धव कहां भी नहीं है, तब इसके लिए वो बतला रहे हैं। दो भूमियां हैं, एक साधन की भूमि और एक साध्य की भूमि। वृंदावन साध्य भूमि है, साध्य भूमि माने क्या, कृष्ण की यहां पर लीलाएं हैं, रस में लीलाएं चलती रहती है, ये साधना का फल प्रयोजन है वृंदावन भूमि। और साधन भूमि बतला रहे हैं उस समय के लिए, अब तो साधन भूमि हो गई है वो नवद्वीप धाम, किंतु इसके पहले के युगों में, इससे पहले बद्री नारायण बेर के पेड़ हैं, जहां पर व्यास जी ने आराधना की है। इसलिए कृष्ण लीला के बाद में कृष्ण ने कहा लीला संगोपन से पहले वहीं पर मैत्रेय जी आ गए और वहीं पर उद्धव जी थे कृष्ण जाने के लिए तैयार। कृपा करके श्रीमद् भागवत का सार महत्व कैसे कृष्ण मिलते हैं ये सब उद्धव संवाद के रूप में उन्होंने बतलाया, जो कि श्रीमद् भागवत के एकादश और द्वादश में एकादश नहीं वो सब वर्णन किया गया ना? तो करें कि साधना की भूमि है बद्री नारायण, इसलिए उद्धव जी को कहा था कि आप बद्री नारायण में चले जाएंगे और मैत्रेय जी को भी वहीं पर भेज दिया, व्यास जी भी वहीं पर तपस्या किए थे और समस्त वेद उपनिषद इत्यादि का वहीं पर प्रकाश किया था, महाभारत इत्यादि का, वेदांत सूत्र इत्यादि का प्रकाशन किया, अनुभूति की वृंदावन में ब्रज का, ब्रज की लीलाओं का, और यहीं पर वो प्रस्तुत कर दिया श्रीमद् भागवत और लिखा वहां पर, किंतु वास्तविक में बना यहीं पर श्रीमद् भागवत वृंदावन में देर वन इत्यादि चारों तरफ में है यहीं पर। इसलिए उद्धव जी तो स्वरूप प्रकट रूप में वहां गए किंतु ब्रज को छोड़ नहीं सकते, इसलिए एक स्वरूप में रहे कहां, ब्रज में। कृष्ण ने कहा कि नारद कुंड के समीप तू रहना, और कैसे रहना, उद्धव जी ने जो प्रार्थना की आसाम हो चरण रेण जिसाम हम श्याम वृंदावने किम बुल लताओ सधीना जब दुष्ट जन सुजन आद्य पथं के हित्वा भेजे मुकुंद पतिविं सुत भीम्रमेज्ञा। सूतियां जो आज तक भी उन्हें सुन करके जिस कृष्ण को नहीं पा सकी, कृष्ण को बड़ा भारी पाना बड़ा दुष्कर है, किंतु चुटकी बजाते ही उनको पाया जा सकता है। कैसे, यदि गोपियों की चरण की धूलि का सेवन किए जाए तो गोपियों के वे ऋणी हैं, जहां चाहे उनको देख सकती हैं कृष्ण को है? इसलिए स्तुतियां उनको खोज करके नहीं पाती, किंतु कोई साधक यदि गोपियों की चरण की धूलि का आश्रय करे उनको पाए। तो उद्धव ने अभिलाषा की थी कि गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए ब्रज में कहीं भी गुल्म लता बन जाऊं और उनकी धूलि पड़ जाए, मेरा जीवन सार्थक हो जाए। किंतु मैं तो धूलि कहां की चाहती हूँ, कहां का चाहती हूँ, कहां का। गोपियां विचार कर रही हूं कृष्ण के पास में मिलने के लिए जा रही हूं रात में, और उस समय उनके चरणों की धूलि जब प्रेम की उमंग में वो बह रही हैं, देख आसु बुध नहीं, और कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं, उस समय कृष्ण उनके चरणों की धूलि हमारे सिर पर पड़ जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। किसकी धूलि, तब वो प्रार्थना में वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम आदरेणु अकृष्ण, एक चरण की धूलि किसकी, यदि राधिका जी के चरण की धूलि मिल जाए। कहाँ रहती हैं राधा जी, राधा कुंड में रहती हैं, राधा कुंड के समय यहाँ पर नारद जी की तपस्या की स्थली है, जो समस्त प्रेमों के गुरु हैं, जो कि गोपी भाव चाहते हैं, नारद कुंड के पास ही में उद्धव कुंड नाम का एक स्थान है, यहाँ पर गोपियों से कृष्ण का दर्शन हुआ था, उद्धव जी भी उस स्थान पर गए थे और वहीं पर गुण लता बन करके अभी तक है। उनका असल स्वरूप तो ये ब्रज में है वहां, और एक स्वरूप से वो कृष्ण ने आदेश दिया था इसलिए बद्रिकाश्रम में चले गए, किंतु उनका मन प्राण सब कुछ यहीं पर है। यदि तुम उद्धव को पाना चाहते हो तो उसी स्थान पर चलो, कहा जहां पर नारद जी का स्थान है नारद कुंड, उसी के पास ही में कुसुम सरोवर है, कुसुम सरोवर के बगल में ही उद्धव कुंड है, वहीं पर गोपियों से उद्धव का संवाद हुआ और वहीं से उनका आना जाना है, राधा कुंड वहीं से समीप है, कृष्ण से मिलने के लिए राधा कुंड से आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं, उन सब कुंजों में आ रही हैं, उस समय उनकी चरणों की धूलि की लालसा से वहीं पर हैं, इसलिए वहां पर चला जाए। किंतु सबको दिखाई नहीं पड़ेंगे, अंतरंग भक्तों को या भावुक भक्तों को देखा दे सकते हैं। कैसे, श्रीमद् भागवत के कीर्तन के माध्यम से भगवान की लीला कथाएं जहां पर वर्णित की गई हैं और वहां पर उसका खूब सुंदर उसमें सुस्वर से गायन किया जाए और उसमें बड़े बड़े भक्त लोग सम्मिलित हों सब को। इसलिए आप लोग ऐसा कीजिए, बद्र को बद्रनाथ जी को उपदेश दिया, तुम जितने भी अच्छे अच्छे भक्त हैं उनको संग्रह करो, मृदंग खोल करताल इत्यादि के साथ और कृष्ण लीलाओं का वहां पर गायन और उसमें सब लोग तन मन सुख छोड़ करके और कृष्ण में एकदम मस्त हो जाए। उस समय में उद्धव जी बिना आए रह नहीं सकते, उसमें उद्धव के क्या है, कृष्ण लीला के जितने परिकर हैं कृष्ण अपने समस्त परिकरों के साथ में गोप गोपियों के साथ में वहां पर प्रकट हो जाएंगे। आगे बड़ी अच्छी बात, बस सुन करके लोग प्रभावित और बद्रनाथ जी सब लोगों को लेकर के वहां पर उपस्थित हुए कुसुम सरोवर के पास में, वहीं पर नाग कुंड एक तरफ में है, वहीं पर उद्धव कुंड है। हम लोग कभी परिक्रमा करते हैं तो वहां पर जाते हैं, अभी भी कुंड है वो, बद्रनाथ के द्वारा ही वो चिन्हित है कुंड। उसी के समीप में वो भी स्थान है जहां पर की वो घाट बने हुए हैं, प्राचीर के द्वारा उसको रख दिया गया है, कोई कोई विशेष लोग वहां पर जाते हैं। उसी के आसपास में ही श्याम श्याम घाट या क्या कुछ है, श्याम कुटी वहां पर पास में कुछ लोगों ने बनाया था। तो ये सब सब दुर्लभ स्थान है, ये लोग वहां पर गए जा करके आरंभ किया। कीर्तन आरंभ करने में जब प्रेम में पिघलने लग गए, हाथ उठा करके मृदंग करताल सब लेकर के तन मन की सुधि छोड़ करके एकदम कीर्तन करने लगे। देखा जाए इतने में अर्जुन वहां से उतर आए, देखा जाए इंद्र आ गए मृदंग लेकर के बजाने लगे, अर्जुन नृत्य करने लग गए। अर्जुन नृत्य जानते हैं कि नहीं, कहां से सीखा, अस्त्राओं से जाकर के इंद्र के स्वर्ग से वो सब सीखे थे, बल्कि कभी कभी वो नारी बन जाते थे, कभी कभी वो सब कलाओं में पारंगत है। अरे देखा प्रहलाद महाराज वहां पर आ गए और वो सब जितने परिकर थे सब लोग आ गए। थोड़ी देर के बाद में उद्धव कुंज से लताओं के बीच से उद्धव जी और कीर्तन में भी मस्त हो गए। जब वो मस्त हो गए तब थोड़ी देर में देखा जी अपनी सखियों के समेत राधा कृष्ण जी सब परिकर के साथ में वहीं पर उतर एकदम प्रमत्त हो गए सब कीर्तन। थोड़ी देर के बाद में ही कीर्तन जब थोड़ा सा समाप्त हुआ, देखा जी से कृष्ण चले गए, परिकर चले गए, उद्धव इत्यादि उद्धव जी का संग हुआ। उन लोगों ने उद्धव जी से फिर पूछा जमुना जी की बात, जमुना जी ने कहा था कि उद्धव का संग होने से तुम्हारा भी शोक दूर हो जाएगा। तो उन्होंने वो सब बतला जो कृष्ण से गोपियों का कभी वियोग नहीं होता, कृष्ण से कभी किसी का भी वियोग नहीं होता है। इस प्रकट लीला में वियोग का भाव दिखाया जाता है, किंतु अप्रकट लीला धाम में वहां पर कुछ समय काल के लिए वियोग होता है, सब समय के लिए वियोग नहीं, जैसा कि इस यहां पर होता है। वहां का काल और यहाँ के काल में बहुत अंतर है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा समय भी बहुत मालूम होता है और वहां पर एक मिनट और यहाँ के लिए हजारों लाखों वर्ष बीत जाता है। इसलिए कहते हैं भागवत का श्रवण यदि कलिकाल में कोई करे तो ऐसे राधा कृष्ण को पा सकता है और उनका वियोग भी दूर हो जाएगा। इसलिए आप लोग भागवत का श्रवण करें, नित्य काल श्रवण करें। जिन लोगों ने मनुष्य जन्म भारतवर्ष में पाया और भारतवर्ष में मनुष्य जन्म लाभ हुआ, साधुओं का संग मिला किंतु फिर भी भागवत को नहीं श्रवण किया तो उनका जन्म वृथा गया। जो लोग भागवत का श्रवण करते हैं अपने कुल का भी उद्धार कर देते हैं, अपना तो होता ही है, स्वकुलम पुनासि अपने कुल को भी एकदम पवित्र कर देते हैं। इसके द्वारा करें हैं भागवत के स्वाध्याय से या श्रवण से ब्राह्मण को विद्या का प्रकाश होता है। विद्या भागवतावधि विद्या का प्रकाश। क्षत्रिय लोग यदि सुने तो शत्रुओं पर विजय पाते हैं, वैश्यों को धन मिलता है और शूद्रों शूद्र लोग स्वस्थ और निरोग बनते हैं, उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। स्त्रियां और अंतर जाति के लोग जो हैं, कोई भी इच्छा इनकी हो भाव के द्वारा परिपूर्ण हो जाती है। लौकिक परोक्ष रूप में स्वर्ग इत्यादि की, मुक्ति की, भक्ति की, प्रेम की, सबकी, क्योंकि ये वंशा कल्पतरु है, निगम कल्पतरु कल्पतरु है, इसलिए पूर्ण कर। इसलिए कौन ऐसा सौभाग्यवान पुरुष है जो भागवत का सेवन न करेगा? जरूर करना चाहिए उन लोगों को। इसकी दो परंपराएं बतलाया, कल ये सब बतलाएगा बच्चा। एक हुआ नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर्लोकी के रूप में दिया, उन्होंने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने